शरीर का नाम है शारिका और मैं बचपन से ही बाबा से जुड़ी हुई हूँ। छोटी थी तब से सेंटर जाती थी तो मुझे बाबा के गीत भी बहुत अच्छे लगते थे, दीदियों का प्यार भी अच्छा लगता था, तो छोटेपन से ही जाना आना चलता था। पर इतना नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, पढ़ लिख करके मैं अच्छी से जॉब करूंगी, जैसा मेरा लक्ष्य था कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है और आम लड़कियों की तरह नहीं रहना है और ऐसा बन करके मुझे अपने लौकिक पिता का नाम रोशन करना है। तो वो पढ़ाई मैंने की, फॉर्म वगैरह भरे सब इंस्पेक्टर की और उसके लिए एग्री भी हो गए, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि ऐसी जॉब नहीं करनी है, तुम कुछ और करो। तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी चीज को फॉलो करूं जिससे पापा का नाम बहुत अच्छे से बाला हो। तो मैं बाबा से जुड़ी हुई थी, बाबा से बातें की, तो फिर बाबा ने सोचा कि मैं यदि जॉब करूंगी, मेरे मन में विचार आया तो मैं बाबा की शायद ही बन पाऊं, क्योंकि नौकरी की टोकरी बाबा कहता उठाना नहीं है, बाबा का बनना है, और एक बार फील्ड में चले गए तो फिर बाबा का बनना मुश्किल। तो इसलिए बाबा ने शायद, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन फॉर्म भी रोक दिया गया और पापा के मुख से भी निकला कि नहीं ये जॉब नहीं करनी है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मुझे फिर मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, यानी घर से कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली बहुत एंटी थी कि आपको ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, ये ज्ञान से बहुत चिढ़ते थे। तो मैं बहाने से आ गई थी कि मैं दीदी के पास जॉब करने जा रही हूँ और मैं बाबा के घर आ गई और कम से कम 10 साल तक बाबा के घर रही समर्पित रूप से और फैमिली को पता ही नहीं चला कि मैं बाबा के घर में हूँ। और फिर बाद में भैया की शादी हुई तब मैं गई और तब उन्होंने देखा और मेरे जीवन का परिवर्तन देखा तो उनसे बहुत उनको प्रेरणा मिली और वो लोग भी बाबा से सोचा कि बाबा की जो शक्तियां हैं, बाबा की जो पावर है इस बच्ची में कितना चेंजेस है और इनके परिवार में भी कितना चेंजेस है। तो वो चेंज देखकर और भी परिवार वाले बाबा से जुड़े। तो हम तीन बहनें समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर रही हैं। बचपन से ही बाबा से जुड़ी हुई हूँ, छोटेपन से ही बाबा के घर आना जाना, बाबा के घर का प्यार, इन सब बातों को लेकर के मैं बाबा को बहुत याद करती थी। और जब स्कूल पढ़ती, सबसे पहला अनुभव ये है कि मैं जब 10th क्लास में थी और मेरे एग्जाम का समय था और मैं अकेली हॉस्टल में रहती थी, तब मैंने बाबा से कहा कि बाबा कल मेरा एग्जाम है और आप मुझे 3 बजे उठा देना और मैं पढ़ करके 7 बजे एग्जाम देने जाऊंगी। ऐसा कहकर मैं रात को सो गई और जब सुबह नींद खुली तो नींद इस प्रकार से खुली कि सवेरे सवेरे 6 बजे जब फेरी निकलती है रघुपति राघव राजा राम की, तो मेरे कानों में वो सुनाई दी कि रघुपति राघव राजा राम, और एकदम से मेरी नींद खुली। तो मैंने कहा बाबा आपने मुझे 6 बजे उठाया और मैंने कहा था कि आप मुझे 3 बजे उठाना, मैं पढ़ करके एग्जाम देने जाऊंगी। तो फिर मैं ऐसे घबरा कर उठी और फिर जल्दी से देखा टाइम तो 3 बज रहे थे। तो मैंने बाबा को बहुत बहुत थैंक्स दिया कि बाबा ने मुझे उठाया, लेकिन थोड़ा सा डरा के, क्योंकि बच्चे प्यार में थोड़ा अलबेले होकर सो जाते हैं, इसलिए मुझे डरा कर उठाया और मैंने पढ़ करके और बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन से पास किया 10th क्लास। और फिर जब से बाबा के प्रति और ज्यादा स्नेह, रोज रेगुलर जाना, बाबा को याद करना, ऐसे करते मैंने अपनी पढ़ाई के ग्रेजुएशन पूरा किया।
मैं डॉक्टर रश्मि दाइमा प्रोफेसर के पद पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में कार्यरत हूँ। बाबा के ज्ञान में आने की मेरी शुरुआत इस प्रकार से हुई, मैं यहाँ इंदौर की बजाय ग्वालियर पदस्थ थी और मेरा परिवार यहाँ इंदौर में था। मेरी बुआ जी जो 80 वर्ष की हैं वो ज्ञान में चलती थी और उन्हें चूंकि दिखाई नहीं देता था इस उम्र में, तो कई बार वो मुझे मुरली पढ़ने के लिए देती थी। तो ऐसे मेरा बाबा के ज्ञान से परिचय हुआ। उसके बाद मैंने व्यवस्थित रूप से 7 दिवस का कोर्स किया और बाबा की मुरली का रेगुलर सुनना शुरू कर दिया। अब बाबा उस समय पर मुरली में अक्सर कहते थे कि बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह बनो, और मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैं बाबा को कहती थी कि आप रोज कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह बनो, और चूंकि मेरा परिवार पूरा इंदौर में और मैं अकेले ग्वालियर में, मेरी बिटिया उस समय आयु में 16-17 बरस की रही होगी और उससे छोटी बिटिया 10-1 साल की थी, सबसे छोटा बेटा 4-5 साल का था, तो उस आयु में बच्चों को छोड़ के रहना मेरे को लगता था कि कैसे मैं बेफिक्र बादशाह बनूं। तो बाबा से अक्सर जब मुरली में ही आता तो मैं बाबा से कहती कि बेफिक्र बादशाह मैं कैसे बनूं, आप मुझे बेफिक्र बादशाह बनाएं। तो बाबा ने मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा स्मरण इसका किया और एक बहुत अच्छा अनुभव करवाया मुझे कि जब बाबा से मैं ये कहती रही उसके दो हफ्ते के अंतर में मैंने देखा कि मेरी बिटिया भी ज्ञान में चलने लगी, वो सिस्टर शिवानी के एपिसोड डाउनलोड करके या सीडी से सुनने लग गई और वो भी यहाँ ब्रह्म कुमारी में आ गई और बाबा की बच्ची बन गई। और बस इस तरीके से पूरा परिवार हमारा सतो प्रधान हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, सबके संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो गए। और बाबा ने इस तरह से मुझे जो मुरलियों में कहते थे कि बेफिक्र बादशाह बनो और मैं बाबा से अक्सर कहती थी कि बाबा कैसे बनूं आप बनाओ मुझे, तो बाबा ने वो बना के बताया और परिवार सभी जब बाबा के ज्ञान में चलता है तो बेफिक्र बादशाह हो ही जाते हैं क्योंकि सभी अपने आप को बहुत हल्का और सहज अनुभव करते हैं। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्मरण है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती और जिसने मुझे ज्ञान में इतनी दृढ़ता के साथ चलने के लिए प्रेरणा भी दी। जब परिवार बच्चों से आप निश्चिंत होते हैं तो आपको लगता है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसका चुनाव बिल्कुल सही है और आपके सारे साथी लौकिक में भी जो आपके साथी हैं वो सारे आपके साथ हैं। तो ये जो स्मरण है ये मैं चाहती हूँ कि सभी के जीवन में इसी प्रकार का अनुभव होता है क्योंकि जो भी जब ज्ञान में चलता है तो वो अकेला होता है, परिवार सभी एक साथ ज्ञान में नहीं आता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उस ज्ञान के प्रभाव से आत्मिक शक्ति के प्रभाव से आपकी दृष्टि वृत्ति से सारा परिवार उससे उसी दिशा की ओर चल पड़ता है और धीरे धीरे इसी प्रकार परिवार से समाज आपका कार्यक्षेत्र। इसका अनुभव मैं अपने कार्यक्षेत्र में भी करती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, प्रोफेसर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी हूँ, हॉस्टल वार्डन भी हूँ, तो बाबा को हाथ साथ लेकर जब भी कोई काम करते हैं तो हमारी वृत्ति शुद्ध होती है, दृष्टि शुद्ध होती है, हमारे विचार पुण्य होते हैं, सात्विक होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। तो जब हमारी मन से भावना अच्छी होती है तो एक्शन भी हमारे ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं और जब एक्शन अच्छे होते हैं तो उनके रिजल्ट भी अच्छे ही होते हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि जो परिणाम मुझे मिलते हैं वो आश्चर्यजनक होते हैं। कई कामों में मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ, अकेले शुरू करती हूँ, बाबा का हाथ साथ लेकर करती हूँ पर वो चमत्कारिक होते हैं, ऐसा लगता है कि शायद 10-12 लोगों ने मिलकर मेरे साथ काम किया। तो ये सारे अनुभव जो है ये जो बाबा को जब हम साथ हाथ साथ लेकर चलते हैं तो ये हमारे घर परिवार, हमारे समाज, हमारे काम, इवन मेरी क्लासेस में जब मैं क्लास लेती हूँ तो पहले और अभी में बहुत अंतर महसूस करती हूँ। पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ वो समझ नहीं बिठा पाती थी या वो समझ नहीं बन पाती थी जो आज मुझे बन पाती है क्योंकि बाबा ने जो आत्मिक शक्ति दी है उससे आप दूसरी आत्मा को क्या चीज चाहिए, किस प्रकार से उसकी जरूरत है आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो और जब आप उसको समझ लेते हो तो फिर आपको उस तक अपनी बात पहुंचाना या उससे उसकी बात समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और युवाओं में हम सीधे आध्यात्म के नाम से हम कहें तो कोई चीज में जुड़ाव नहीं होता परंतु जब हम उनकी समस्याओं पर जाते हैं और जब उन समस्याओं को हमारे बाबा के ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान या हम पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस फ्री लिविंग से जोड़ते हैं क्योंकि युवा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस समय का और उनकी स्थिति ऐसी है कि ना वो घर में चर्चा करते हैं, ना ही वो दोस्तों में चर्चा करते हैं, ना ही शिक्षकों से चर्चा करते हैं, तो ऐसे में वो बहुत अकेले हो जाते हैं और फिर दिशाहीन हो जाते हैं। तो दिशा देने के लिए यदि हम किसी एक जगह उनको खींच के लाए तो शायद ना आए पर जब हम उनके लेवल पे उनकी दृष्टि वृत्ति से जाकर के उस चीज को समझते हैं और फिर अपनी अपना बाबा का अनुभव और अपनी आत्मिक शक्ति का प्रभाव से जब उस समस्या का समाधान करते हैं या उनको वो सलाह देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर चलते हैं और उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हम पाते हैं। ऐसे कई बार मुझे कई अवसरों पर कई लोगों ने कहा कि आपका इंटेलेक्ट मैडम बहुत डिफरेंट है, तब मैं मुस्कुराकर कहती हूँ कि ये सब बाबा की करामात है। कई बार लौकिक में हम सामने नहीं कह पाते पर मन में मैं मुस्कुराकर कहती हूँ कि ये बाबा का करामात है। जैसे कई बार जिस चीज पर सभी लोग बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं, सोचते कि यह असंभव है, हो ही नहीं पाएगा, मैं अपने आप को पाती हूँ कि मैं तब भी यही सोचती हूँ क्योंकि बाबा है, बाबा का ड्रामा है, सब कुछ निश्चित है और जो है वो सब कुछ कल्याणकारी है और जो होगा वो भी सब कुछ कल्याणकारी होगा। तो इस विचार से मैं कभी अपने आप को हताश निराश या किसी चीज में ये नहीं सोच पाती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे हमेशा मालूम होता है कि सब कुछ कल्याण के लिए और सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। तो ये सारी चीजें जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करती हैं, आपके प्रोफेशन में, आपके काम में, ये बहुत ही अद्भुत है, जिसको कि शब्दों में शायद कई बार हम नहीं कह पाए या हम मैं उस लेवल तक शायद शब्दों में ना बता पाऊं। पर वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम अपनी दृष्टि से, अपनी आत्मिक पावर से हम सभी को सकास दे पाते हैं। और सकास सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं, शांति का या ज्ञान का, जिस आत्मा की जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, बाबा ने आज अपने बच्चों को इस प्रकार की आत्मिक शक्ति दृष्टि वृत्ति दी है कि जिस प्रकार की जिसको जरूरत होती है उसको वो अनुभव करके और उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करके उसको सकास दे पाते हैं। हर एक का अनुभव हर एक से अलग होता है। मेरे पूरे परिवार का अनुभव, हर बच्चे का, मेरे पति का, सभी का अनुभव अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके रहा है। बाबा के कोई साथी बने, कोई दोस्त बने, कोई गुरु रूप में उनको लिए, परंतु सबका साथ जब बाबा के साथ हुआ तो सबको एक अनुभव अलग ही प्रकार का हुआ। पहली बार जब माउंट आबू गए तो लगा कि वाकई स्वर्ग धरा पर आए हैं। बाबा के कमरे में गए, हिस्ट्री हॉल में गए, तो एक अनुभूति अलग प्रकार की हुई। तो जब डिवाइन पावर से हम कोई भी रिश्ता बनाए, चाहे वो गुरु का हो, चाहे हमारा मित्र का हो, सखा का हो, पिता का हो, बाप दादा का हो, जो भी रूप में हम जब उसे अपने हाथ साथ साथ में रखते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो बंधन अपने आप अनुभवों का एक सिलसिला बन जाता है। और ये सिलसिला अनवरत है, कोई एक दो प्रसंग नहीं हो सकते, ये अनवरत चलने वाले प्रसंग है जिनको हम हर पल अनुभव कर सकते हैं।
मैं देवाशीष राठौर, यहीं स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में कार्यरत हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं अपनी PhD भी डॉक्टर रश्मि दाहिमा मैडम मेरी मेंटर हैं उनके अंदर मैं अध्ययनरत हूँ। मैं बाबा से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं अपनी भुआ जी फूफा जी के घर यहाँ साकेत इंदौर में आया करता था तो मेरे फूफा जी उनको मानते थे। तब मैं सिर्फ इतना जानता था कि हाँ शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन कभी इतना ज़्यादा कभी जानने को नहीं मिला। अभी पिछले 3 साल से मैं मैडम के कारण बाबा के ज्ञान में आया। मैंने कोर्स किया, कोर्स के दौरान मुझे जो है थोड़ा सा मैं कर्म प्रधान हूँ, तो मुझे कई बार ऐसे काम करते करते ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा जब टेंशन होता है, कुछ होता है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। मैं ऐसा प्लेस ढूंढता था कि मैं कहाँ पे जाके मैं सही तरीके से मेरे को ऐसा कुछ पता लगे, सोर्स पता लगे, अप्रोच पता लगे कि मैं उसके थ्रू मैं कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे उससे ज्ञान प्राप्त होता है, क्या हमको फायदा होता है, ये सब हमें रहे। मैडम के थ्रू मैं शुरुआत में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मेरे जाना हुआ सेंटर में, वहाँ पे जाके मैंने ध्यान लगाया, मुझे कुछ अलग अनुभूति हुई। उसके बाद में फिर मेरा एक बार मुझे माउंट आबू जाना हुआ। माउंट आबू जाने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो जो 7 दिन मैं वहाँ पर रहा, वो मुझे स्वर्ग सा अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगता, सुबह जल्दी उठ जाते, शाम तक हम ध्यान लगाते, मुझे ध्यान लगाना उस समय तक बहुत अच्छा लगता था। फिर ये हुआ कि जब मैं वहाँ का ज्ञान लेके यहाँ पे आया, और होता है कि हम काम करते हैं तो बहुत टेंस होते हैं, मैं अपनी PhD कर रहा हूँ, उसके अलावा भी घर परिवार के बहुत कुछ ना कुछ होता है, तो बस वहाँ से मुझे ये लेके आया कि बाबा का एक सेंटेंस मुझे याद रखा कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बस वो मैं मन में रखता हमेशा, हर कार्य बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में होता चला जाता। कुछ भी ऐसे टेंशन होते तो बाबा का मन में अपन ने ध्यान किया, कुछ भी बड़े से बड़ा काम है बाबा का ध्यान किया, तो हमेशा वो काम बहुत इजी वे में होता चला जाता। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। बाबा से मैं जुड़ा हूँ, उनकी सेवा मैं करता हूँ, उनसे जुड़े सारे सेवा में मैं लगा हूँ। यहाँ भी रह के मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के अलावा भी जितने जो एक लौकिक के अलावा जो जितना भी हम बौद्धिक शिक्षा है, वो हमें बाबा के कारण ही हम दे पाते हैं।
मेरा नाम पूजा है, मैं सेकेंड ईयर BCom की स्टूडेंट हूँ, सुल्लाखेड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं सेंटर में 5-6 साल पहले आई थी, मंदिर जैसा समझकर रोज बाबा के यहाँ आती थी भोग लेने के लिए गुरुवार के दिन। फिर धीरे धीरे मुझे बाबा का अनुभव होने लगा, दीदियों ने बताया, बाबा के बारे में बताया, फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया। फिर मैंने मम्मी को बताया कि सब जाते हैं तो आप भी जाइए बाबा के यहाँ। फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी आना स्टार्ट किया। मैं डेली सेंटर पर तो नहीं आ पाती हूँ, पर घर पर फेस ऑफ माइंड चैनल पर मैं बाबा की मुरली सुनती हूँ और सूरज भाई के शो भी रोज डेली देखती हूँ, एक भी शो मिस नहीं करती हूँ। मुझे उनके शो बहुत पसंद है और उनके द्वारा बताए गए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे वो बताते हैं हर चीज बहुत विस्तार से बताते हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार मम्मी बताए, फिर मम्मी आने लग गए धीरे धीरे। फिर मम्मी बताते हैं बाबा के बारे में कि बाबा का ज्ञान बताते, बाबा के अनुभव सुनाते, योग करना चाहिए, अमृत बेला योग करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मम्मी समझाते रहते हैं। मुझे बचपन से ही गले में एक गठान थी तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर अभी बड़ी होने पर उसने प्रॉब्लम कर दी तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टीवी की बीमारी बताई। तो बहुत टेंशन हुआ, मम्मी बहुत रोए भी सही कि फिर आगे क्या होगा। तो मम्मी रोज योग करते थे, बोलते थे तू भी योग किया कर। मैं बाबा का योग करती थी, पानी चार्ज करके पीती थी। यहाँ पर ऑपरेशन का बोल दिया गया तो पापा ने ना बोल दी कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ हो गया तो। फिर मुझे अहमदाबाद दिखाया गया, अहमदाबाद योग करने। 2-3 महीने की गैपिंग में मैं योग करती थी, मम्मी भी योग करते थे मेरे लिए कि ऑपरेशन ना हो, ज़्यादा कुछ हो ना मेरे साथ, फिर आगे क्या होगा मेरे भविष्य का। तो फिर अहमदाबाद दिखाया 3-4 महीने बाद, तो डॉक्टर ने जब मेरे रिपोर्ट से देखे, सारे रिपोर्ट से देखे, उसमें क्लियर आ गया था कि टीवी है, ऑपरेशन होगा। पूरे इंदौर में बोल दिया गया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा वरना आगे कुछ भी हो सकता है। फिर मैं 3 महीने बाद अहमदाबाद गई अहमदाबाद दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट से देख के बोल दिया कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा और तुम यूं ही ठीक हो जाओगे ट्रीटमेंट लोगे तो। मम्मी को बहुत अच्छा लगा सुनकर। उसके बाद भी डॉक्टर बोले कि नहीं, एक बार तो जांच करना पड़ेगी कि ऑपरेशन हो कि नहीं हो, एक बार और कंफर्म करते हैं। तो मेरी जांच करी तो मम्मी पानी चार्ज करके दिया था, मुझे बोला था कि बाबा का नाम लेना और जांच के लिए जाना, कुछ नहीं होगा। फिर मैं जब जांच के लिए गई वहाँ पे, मेरी रिपोर्ट्स आई तो मेरी रिपोर्ट्स में टीवी तो आया, बट डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा, बोले दवाई गोली से ही तुम ठीक हो जाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब से मुझे बाबा में और इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं बाबा मिलन के लिए भी गई, वहाँ पर 15 दिन के लिए सेवा में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा में भी सेवा करी बाबा की। मेरी मम्मी सेंटर आते हैं पर पापा सहयोगी तो है, बाबा का सहयोग भी करते हैं सब है, परंतु उनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मम्मी पे चिढ़ते हैं कि सेंटर सेंटर जब देखो। मैं मम्मी को सपोर्ट करती हूँ हर बात पर कि नहीं आप जाया करो। मैं पापा को बोलती हूँ आप मम्मी को जाने दिया करो, पर वो पापा उनको पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप एक माया जैसे आ जाती है कि नहीं जाने देना। पर फिर भी वो सहयोग करते सेंटर पर, बाबा की सेवा भी करते हैं, सब करते हैं, पर फिर भी मम्मी को विरोध करते हैं, लड़ाई करते हैं कि सेंटर जाती है मत जाया कर, लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा। पर भी मम्मी सेंटर आना बंद नहीं करते और हमको भी यही सिखाते हैं कि ज्ञान के बारे में बताते हैं।
मेरा नाम बीके दीपाली है, मैं बाबा की बच्ची हूँ। मेरी पाठशाला की माता के वहाँ उनके पुत्र का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बाबा की शक्ति से। उनके दोनों हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे, उनके हाथों की पूरी नसें कट गई थी, मांस चला गया था। हमने योग करने के लिए एक चित्र बनाया था, है ना, जिसमें हम आसानी से विजुलाइज कर सके कि कैसे बाबा की किरणें नसों पे जाती है और हाथ की नसें कैसे ठीक होंगी, है ना। क्योंकि उन भाई की नसें पूरी तरह से चले गई थी, तो नसें कोशिकाओं में बाबा की शक्ति देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने मेडिटेशन से ये चित्र बना के बताया कि कैसे बाबा की किरणें हाथ पे न जा रही है, है ना, और कैसे उन नसों के द्वारा शक्ति मिल रही है और कोशिकाएं बनती जा रही हैं, कोशिकाएं बनने से नसें बनती जा रही हैं। और इधर दूसरी तरफ हमने हड्डियों पर भी बाबा की शक्तियां डलवाई है, ये जा रही है शक्तियां और ये हाथ के हड्डियों पे जा रही है, जिससे कैल्शियम बन रहा है, सही मात्रा में कैल्शियम बन रहा है
और उस कैल्शियम से हड्डियां बन रही हैं, हड्डियों में मजबूती आ रही है, किसी भी चीज़ को पकड़ने की शक्ति आए, ऐसा हमने संकल्प रख के बाबा को याद करके मेडिटेशन करवाया था। और उसका परिणाम ये है कि वो भाई का हाथ आज काम कर रहा है। एक साल हुआ है अभी उनके एक्सीडेंट को, और इस एक साल के अंदर मतलब उनका लगभग ठीक ही हो गया है हाथ। और जिस डॉक्टर ने उनका करा था, उनका भी एक्सपेरिमेंट ही था ये, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा। इसमें उनकी बीट वाली जो नस होती है, हार्टबीट वाली नस, वो भी बहुत डैमेज हो गई थी। तो उन्होंने पेट से हाथ को ज्वाइन करवा के ऑपरेशन करा था। तो ये उनका भी न्यूज़पेपर में छपा था, एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने और ये सक्सेसफुल था। मतलब बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने भी एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल रहा। मतलब कितनी बड़ी बात है, बाबा सुप्रीम सर्जन है, आज ये एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया।
मेरा नाम सुभाष भाई, मैं तो 12 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मुझे शुरू बार में यहाँ पे भगत जी वाने लाए थे। इसके बाद 7 दिन का कोर्स हुआ और मैं माउंट आबू भी लगे शिविर में। वहाँ पे मेरे को शुरू में तो ऐसा लगा कि नहीं चलना चाहिए, पर वहाँ पे जाके देखा तो बहुत ही अलग लगा कि यहाँ तो स्वर्ग है। फिर वहाँ से मैंने शिविर किया, क्लास भी 7 दिन का कोर्स भी वहीं पे करवाया दीदी ने। और जब से मैं यहाँ तो चल रहा हूँ। बाबा, मुसीबत तो बहुत आती है मगर बाबा है तो उस मुसीबत को सब पार कर देते हैं। मैं बाबा की याद में रहता हूँ।
मेरे शरीर का नाम प्रेम है और विगत 1970 से मैं इस ज्ञान में ज्वाइन हुआ हूँ। इस ज्ञान में आने के पहले मैं बहुत ही दूसरे धर्मों को मानता था, जैसे क्रिश्चियन धर्म है और साईं बाबा है और दूसरे भी और अन्य मुस्लिम धर्म के लोग हैं, पीर पैगंबर हैं। उनमें मेरी धार्मिक भावना होने के कारण मैं वहाँ आता जाता रहता था। लेकिन ये सब करने के बाद साथ ही साथ मैं गीता में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था, रामायण में बहुत इंटरेस्ट रखता था। रोज तो गीता पढ़ता था और रामायण भी पढ़ता था। लेकिन पढ़ने के साथ साथ मुझे जो प्राप्ति होना चाहिए थी वो प्राप्ति नहीं हो पाती थी। मैं हमेशा ज्ञान में सोचता था, जब भी मैंने धर्म कर्म की बातें सुनी तो वहाँ पर बताया गया कि ये देवी देवताएं तो मर जाते हैं। तो मेरे मन में सदा एक ही विचार रहता था कि देवी देवता मर जाते हैं तो फिर ये भगवान कैसे हुए। तो इस बात की बहुत चाहना मेरे मन में रहती थी। तो इस चाहना के कारण इसलिए मैं हर धर्म में जाता था, लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती थी। साथ ही जब इसी चाहना के कारण, और मैं साथ में पढ़ता भी था, स्टूडेंट भी था, मेरे परिवार बहुत गरीब परिवार से थे और वो सभी तरह से अक्षम थे, जैसे तैसे मुझे पढ़ाते थे। मेरे घर परिवार में बहुत लंबा चौड़ा परिवार था और उस परिवार में मैं सबसे बड़ा होने के कारण कुछ जिम्मेदारी मेरे पास थे। इसके कारण मेरे परिवार वाले बहुत ही वो करते थे कि तू जल्दी पढ़ो और आगे जाके नौकरी करो। बड़ा होने से जिम्मेदारी होने के कारण मुझे बहुत ही बोझ महसूस होता था और धर्म कर्म के साथ साथ मैं नौकरी भी ढूंढता था। लेकिन नौकरी जब मैं इस ज्ञान में आया तो मुझे बाबा ने नौकरी दिलाई। बाबा की श्रीमत से मैं पुलिस में भर्ती हुआ और पुलिस में भर्ती होने के साथ साथ मैं 29-30 साल लगभग सेवा करी। अभी रिटायर्ड हूँ, उसके बाद अभी बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ। और इस ज्ञान में आने के पहले मुझे जीवन में बहुत ही अज्ञान काल के अंदर बहुत ही गलत गलत धारणाएं थी। खान पान मेरा शुद्ध था, संगत मेरी खराब थी, लड़ाई झगड़ा करने में वो माहिर था, क्रोधी था। लेकिन जैसे जैसे मैं ही ज्ञान में आया तो इस ज्ञान योग के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरे परिवर्तन आने से मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए, मेरे मित्र संबंधी भी बहुत खुश हुए। इससे प्रभावित होकर मेरे साथ जो पुलिस में भर्ती थे कई भाई लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और जुड़ने के साथ साथ उन्होंने अपना जीवन भी इसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर अच्छा कर दिया। और साथ ही तरह तरह के जो भ्रांतियां थी जो मेरे मन में भगवान के प्रति कि भगवान 33 करोड़ देवी देवता हैं लेकिन 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, परमात्मा एक है, वो परमात्मा एक है, वो निराकार है और वो जन्म और मरण से न्यारा है। इसके कारण मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था और मेरे जीवन में धीरे 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 सब खान पान में शुद्धि आने लगी, संगत मेरा गलत छूट गया, मुझे नौकरी में धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे प्रमोशन भी मिलने लगा। तो आज मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरा जीवन अच्छा ज्ञान युक्त योग युक्त चल रहा है। ऐसे आप तो समझते ही हैं कि किस प्रकार से पुलिस विभाग में पुलिस का नाम सुनते से लोग नाक मुंह सुकुड़ते हैं और पुलिस विभाग को खराब मानते हैं। तो साथ ही हम जब ड्यूटी पर रहते थे तो हमें गुंडे बदमाशों से ज़्यादा मतलब उनसे संबंध मिलता था हमारा, कुछ उनके संबंध में लड़ाई झगड़े के कारण उनसे टच में आना पड़ता था। उनको भी हम प्रेम प्यार से समझाते थे कि देखो भाई ये जीवन में कोई मारपीट से कुछ फायदा नहीं है, आप प्रेम प्यार से रहो और अपना काम करो। तो बेचारे वो मान जाते थे, मान इसलिए जाते थे क्योंकि हमारे ज्ञान योग की धारणा के कारण उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता था, हमारे बोल में उस वजन होने के कारण उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। तो वो भी धीरे धीरे बेचारे के सुधरने लगे। वो कई तो संस्कारी रहते ही हैं जो अपना करते हैं, तो इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया।